अपना है, किसी डिग्री वाले से जाकर अपना नब्ज दिखाओ और थर्मामीटर रखो और पहचान लो अहले जिक्र को पूछने का हो। तो खैर, ये फुकहाए किराम आए दुनिया में, उन्होंने बताया कि अमल का तरीका क्या है, वुजू किस तरह करना चाहिए। छोटे छोटे इख्तिलाफात आए उनके दरमियान, मैंने बारहा कहा कि वो कोई अहम नहीं है। अहम नहीं है कि उसे इतना बड़ा बना लिया जाए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास वुजू में चार फर्ज हैं, फराइज हैं। चेहरा धोना पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक, दाहिने कान की लौ से बाएं कान की लौ तक फर्ज है। दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना फर्ज है। कम से कम चौथाई सर का मसह करना फर्ज है। दोनों पैरों का टखनों समेत धोना फर्ज है। हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके साथ नियत करना भी फर्ज है। उनके नजदीक अगर कोई शख्स नियत करे बगैर ये सब धो लेगा, जैसे कोई काम से वापस आया और नल के पास खड़े होकर फ्रेश होने के लिए, धूल को दूर करने के लिए हाथ पैर चेहरा वगैरह धोता है, तो हजरत इमाम साहब फरमाएंगे उसका वजू हो गया। हजरत इमाम शाफी फरमाएंगे वजू नहीं हुआ। या चलते चलते फिसल कर कोई तालाब में गिर गया, तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे उसका वजू हो गया, हजरत इमाम शाफी फरमाएंगे नहीं हुआ, इसलिए कि उसकी नीयत नहीं थी। इमाम साहब भी फरमाते हैं कि नीयत ना हो तो सवाब में तो कमी होती है, कि वो जो एक एक हिस्से के धुलने पर गुनाह धुलते हैं, हदीसों में आया है, चेहरा धोते हैं तो जबान आन कान के गुनाह धुलते हैं, हाथ धोते हैं तो हाथ के गुनाह धुलते हैं, तो वो तो नहीं होगा उस वक्त, इसलिए कि उसमें इरादा नहीं था उसका, लेकिन फर्ज अदा हो जाए। और एक फर्ज कहते हैं हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कि तर्तीब फर्ज है। कुरान में कहा गया है फ़ग़सिलू वुजूहकुम, नमाज का इरादा करो तुम लोग तो चेहरा धो, वाईदियकुम और हाथ धो, इलल मराफिकी कोहनियों समेत, वमसहू बिरुउसिकुम और सरों का मसह करो, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ पैरों को धो काबैन समय तखनों समय। चूंकि कुरान ने एक तरतीब से बयान किया है, इसलिए तरतीब भी जरूरी है। अगर कोई वजू में बेतरतीबी करे कि पहले सर मसह कर ले फिर हाथ धोए फिर चेहरा धोए, तो हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं वजू नहीं होगा। हजरत इमाम साहब फरमाते हैं अल्लाह ने वाव का तज़किरा किया है और का माना है, इसमें तरतीब के लिए और का लफ्ज नहीं आता। जैसे उर्दू जबान में कहेंगे कि खालिद आया और अम्र आया और बकर आया और जैद आया, तो ये माना नहीं कि तरतीब से आए, बल्कि चार आदमी आए बोलना मकसद है, इसलिए तरतीब जरूरी नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहाँ वो सिर्फ पैर धोकर बाहर आ जाए और फिर बेसन में हाथ और मुंह और सर का मसाह और हाथ धो ले, तो भी उसके लिए जायज बेहतर नहीं है। लेकिन जवाज की हद तक हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तो 10 फरीजा फरमाते हैं, इमाम मालिक 8 फरीजा फरमाते हैं, हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने सबको लिखकर फरमाया बेहतर है तकलीफों वाले सारे काम कर लो, सबके नजदीक वजू हो जाए और सबसे बाबरकत वजू हो जाए। और आज के जमाने के जो नौजवान हैं وہ جو سب سے آسان ہے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا آسان ہے اسے لے لیں گے، امام شافعی کے پاس کیا آسان ہے اسے لے لیں گے، یہ اپنی مرضی کا دین چلاتے ہیں۔ خیر میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، تو اعمال کے لیے، عبادات کے لیے اللہ نے کچھ بزرگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے دین کو سکھایا اور سمجھایا کہ یہ ایسا کرنا ہے یہ ایسا، اور اس پر اتنی محنت کہ رات رات بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھار ایک مسئلے کے حل کے لیے دن دن لگ جاتے تھے، اور ساری کتابیں اور ساری احادیث تلاش کی جاتی تھی، اور بڑی محنتوں کے بعد نتیجے پر نکلتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دو خاص شاگرد ہیں، بلکہ تین شاگرد ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین خاص شاگرد ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی مسئلے میں کہ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ استاد کے قول کے خلاف فرماتے کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے، اور امام ابو حنیفہ برا نہیں مانتے تھے کہ میرا شاگرد ہو کر میرے خلاف کہہ رہا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی بہتر وہی ہے جو ابو یوسف نے کہا ہے، چلو اسی پر فیصلہ کر لیں۔ یہ تھا بزرگوں کا کام، اور اتنی محنتوں سے انہوں نے دین کو جمع کیا، ہم لوگوں نے اسے کھیل بنا لیا ہے، جس طرف چاہے موڑو، جیسے چاہے کرو، اللہ ہماری عبادت۔ پھر قلب، دل، اس کے لیے جسے کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاقیات اگر درست نہ ہو تو پھر عبادات درست نہیں ہو سکتی۔ عبادت تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے کو، سورہ فاتحہ پڑھنے کو، سورہ پڑھنے کو، رکوع کرنے کو، سجدہ کرنے کو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ لیکن عبادت کی روح یہ ہے کہ جیسے جسم جھک رہا ہے دل جھکے۔ بہت سارے ایسے ہیں، قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقارین یقرؤ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت۔ کیا مانے کہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ زبان کا عمل ہے، الحمدللہ، الف اور لام اور ہا اور میم اور دال کی آواز نکالنا ہے، لیکن دل بھی اس طرف کو توجہ ہو، یہ ہے بڑا کام۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہوں کی معافی کا دعویٰ ہے کہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے۔ یہ احتساب جو ہے وہ دل کا عمل ہے، دل وہاں ہو۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ کان نہ کترا ہو، کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اور اللہ نظر آ رہے ہیں تمہیں۔ اس کیفیت کا نام احسان ہے۔ بہت مشکل، اس کے لیے ایک جماعت اللہ نے بنائی جنہیں صوفیہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین۔ اور یہ جو صادقین کی جماعت ہے جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ अब ये मैं इतराज और ये जवाब के गलत सही वो आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने तो मेयार रखा है कि इस्लाम के नजदीक लिबास मेयार में लिबास का असर है, जाहिर का असर अंदर पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। गज़वे हुनैन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, एक जगह पड़ाव। अब एक सहाबी ने अजान दी जोर से, गैर बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्होंने जोर की आवाज सुनी तो इन्होंने भी आवाज लगाई, वैसे ही नकल करने लगे। अजान हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उन बच्चों को पकड़ कर लाओ। भाग गए बच्चे। एक अबू महजूरा एक बच्चा था, बड़ा था, उसे भागते हुए शर्म आई कि अच्छा नहीं, चलो देखेंगे। पकड़ कर लाया गया उस बच्चे को। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। बोलो फिर नकल करो। बोलो अल्लाहु अकबर। उन्होंने आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहा, जोर से अल्लाहु अकबर बोलो, फिर जोर से कहा, बोलो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तरह परेशानी हुई, हम समझदार थे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तौहीद का इकरार है, लेकिन चूंकि अरब अल्लाह को रब मानते थे और अल्लाह ही का लफ्ज बोलते थे, जैसे आपके वालिद का नाम अब्दुल्लाह है तो आपके दादा मुहतरम अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बच्चे को अब्दुल्लाह नाम जो रखा है, अल्लाह का बंदा, तो वो तो अल्लाह को मानने वाले थे। हाँ, बुतों को मददगार मानते थे। अब यहां तौहीद, चलो अल्लाह तो है ही ताकतवर, बोल देंगे। उन्होंने आहिस्ता से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से बोलो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से कह दिया। अब बारी आई अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह की। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार, लेकिन इतने लोग जमा थे वहां कि मजबूरन उन्होंने आहिस्ता से कह दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा जोर से कहने के लिए फरमाया तो जोर से कहा। उसके बाद आका ने भेजा, जाओ। तो वो खड़े हो गए, कहने लगे, अब तो मैंने आपकी नबूवत का इकरार कर लिया है, अब क्या जाओ। जाहिर का असर दिल पर पड़ता है, ऐसा नहीं कि बेअसर। कोई आदमी अगर कानों में बानियां लटकाए, नाक छेदे और साड़ी वगैरह जैसा लिबास मुसलसल कुछ दिन पहने तो उसके चलन में नजाकत आ जाएगी, गुफ्तगू में औरतपन आ जाएगा। इसलिए कहा गया कि दिल न माने तक भी औलिया अल्लाह के लिबास पहनो। इदा लम तबकु फतबाकुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोना ना आए। नहीं आता बुजुर्ग को, ऐसा नहीं कि सख्त दिल होते, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं। खून के ग्रुप का असर रहता, आंखों में पानी की कमी रहती, या ऐसे कई मसाइल हैं जिनकी वजह से रोना नहीं आता बाद लोगों को, वो खुद को बुरा ना समझे। उन्हीं के लिए आका ने फरमाया रोना ना आए तो रोने की सूरत बना लो, अल्लाह को वह भी पसंद है। इदा लम तबकु फतबाकु, रो नहीं पाओ तो बोलने की शक्ल बना लिया, उसे भी अल्लाह पसंद कर लेते हैं। समंदर पार करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरे सारे दुश्मनों को तूने मेरी आंख के सामने मलिया मीट कर दिया, सब डूब कर मर गए, लेकिन एक दुश्मन हमारे साथ समंदर पार हुआ है, उसका नाम है सामरी। उससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, वो दुश्मन को या मस्खरा था, लिबास पहनता था फिरौन के दरबार में हजरत मूसा का, वैसे ही एक कसा को पकड़ता हो और अदाकारी करता ऐसा जैसे हजरत मूसा बोलते थे वैसी नकल करता था, जिससे हजरत मूसा को बहुत तकलीफ होती थी। सारे दरबारी हंसते थे उसके काम से, लेकिन वो समंदर पार हो गया, मरा नहीं। अल्लाह ने कहा मूसा गलत आदमी था, पहले ढूंढ कर मरना चाहिए था उसको, लेकिन वो लिबास आपका पहनता था, मुझे डुबोते हुए शर्म है कि मेरे महबूब पैगंबर का लिबास पहना हुआ है, उनकी जैसी शक्ल बनाए हुए है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उलिया अल्लाह को तलाश करें, वो नहीं जो चले गए, उनकी सोहबत का हुक्म नहीं है यहां। यहां अल्लाह फरमा रहे हैं जो आपकी दुनिया में है, ये न समझे कि दुनिया खाली हो गई है, नहीं। खुद हजरत इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली सारों ने कहा है अल्लाह का ये इनाम है कि हर दौर में गौस होते हैं, हर दौर में कुतुब होते हैं, हर दौर में अब्दाल होते हैं, तलाश बहुत मुश्किल है लेकिन पहचान तो सकते हैं कि ये नमाजी है, हर सुन्नत का एहतिमाम करता है, अजान का कान पर असर न हो उसे बड़ी समझे, इससे बड़ा अहमक और कौन होगा जो अल्लाह के कानून के खिलाफ करे। हजरत पीर साहब हजरत जुल्फिकार अहमद साहब दामत बरकातुहु औरतें भी ख्वाहिश करती बैत करने की, पर्दे में होती वो हजरत कभी देखते नहीं, नजरें झुकाए बोलते कि मैं जो बोलूं उसकी नकल करो, आवाज आहिस्ता हो, कि शैतान औरत की आवाज के जरिए से भी हमला करता है। अब जो पैर दबवा रहा हो औरतों से वो दीन वाला है, शरीयत के खिलाफ किसी का कुछ नहीं चलेगा, शरीयत तयशुदा है, हराम वाज़े है, हलाल वाज़े है। कभी सुनाया था मैं कि काजी थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान मस्जिद के किनारे बैठा नशा कर रहा है जुए का, गए आवाज डाले भगा दिए उसे। ख्वाब में रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, देखा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब खड़ा है और उसकी आंखों में दर्द है, गोया शिकायत कर रहा है। अब हजरत परेशान हुए, क्या रिश्ता होगा उसका आका से सुबह को, मैं क्या करूं अल्लाह। दूसरे दिन फिर नशा कर रहा था, हजरत ने काजी ने फिर उसको मारा और भगाया मस्जिद से, फिर ख्वाब में ज़ियारत हुई कि आका के और करीब पर की किताबों में लिखा है कि गोद में सर रखे सोया हुआ था और आका की निगाहें शिकायत कर रही थी। तीसरे दिन फिर नजर आया तो हजरत फिर मारे उसको भगाए। तीसरी रात फिर ख्वाब में ज़ियारत हुई तो काजी वक्त ने सर से अमामा निकाला और आका के कदमों के पास रखकर फरमाने लगे, आका ये जिम्मेदारी थी मेरे सर पर, अब मैंने निकाल दिया है, अब मैं नहीं डांटूंगा। आका ने फरमाया पहन लो। अगर कोई मुझसे नजदीक ख्वाब में नजर आए तब भी हराम हराम है। दीन तयशुदा है, उसमें तब्दीली आ नहीं सकती। कोई दलील सारा आलम मिल जाए लेकिन हराम को हलाल नहीं बना सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया कि बुरा जानवर हराम है, हराम है। किसी हालत में किसी के कहने पर वो हलाल नहीं हो सकता। लाताअत अभी मखलूक की मासियत खालिक, बनाने वाले अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए मखलूक में से कोई, चाहे शेख, चाहे माँ, चाहे बाप, चाहे उस्ताद, कोई भी कहे कि अल्लाह की नाफरमानी करो तो नहीं की जाएगी। नहीं, शेख क्या करता है? शेख वली उसे साथ रखता है, वो बीमारी को समझता है कि ये देखने में तो बड़ा नर्म मिजाज दिखता है, इसके अंदर मई है, इसे निकालना है, बड़ा मुश्किल काम है। अब वो जिसके अंदर ये बीमारी होती है वो कोई ऐसा छोटा काम नहीं कर सकता, डरता है वो कि लोग क्या समझेंगे, मेरा मर्तबा गिर जाएगा। साथी पानी मांग रहा है, नहीं उठेगा पानी देने के लिए, अरे मैं उठकर लाकर दूंगा तो लोग जो आसपास हैं वो समझेंगे ये मामूली आदमी। हालांकि आदमी इससे मर्तबा बढ़ता है, घटता नहीं है, लेकिन वो जिसके अंदर बीमारी होती है मैं हूं, वो बीमारी को निकालते हैं। और वो बीमारी जब तक है इबादतों में असर नहीं होता, दुआएं करता रहता है वापस आ जाती है दुआएं, नमाजें हो रही हैं कोई चेहरे पर नूर नहीं आता। क्यों? अंदर की खराबी। इसलिए कि इबादत तो जाहिरी अमल को कहते हैं और अखलाक अंदरूनी है, हसद है, कीना है, बोझ है, अदावत है, खामखा की दुश्मनी है। इन्नका लतसिल रहीमा, कल्ला वल्लाही ला युज़ीक अल्लाह अबदा। हजरत खदीजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ऐसे जाये नहीं करेंगे, आप तो रिश्ते जोड़ते हैं, भाई गुस्सा कर लेता है, नीचे होकर मिलते हैं आप, रिश्तेदार कटते हैं, आप जाकर जुड़ते हैं, कचरा सर पर डालती है आप उसकी यादत करते हैं, जब वो बीमार हो जाती है बोझ उठाते हैं आप तो आला दर्जे के, हमें नहीं, किसी का कोई काम नहीं करूंगा, मेरा तो मर्तबा कितना बड़ा, मौलवी साहब ने ये बीमारी आ जाती है, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी फिक्र में भी नहीं, इसके लिए तो सोहबत जरूरी है। तो सोहबत का असर, हजरत कारी तैयब साहब हजरत रहमतुल्लाह ने लिखते हैं, 8 साल के थे, गंगोह गए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती, वहां का माहौल ऐसा था कि हजरत ने देखा कि धोबी कपड़े धो रहे हैं और छाटते हुए इल्लल्लाह 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 की आवाज निकाल, कहां से, हर तरफ वही आवाज। अब सहाबा फरमाते हैं अगर हम में से कोई रात के 3-3.30 बजे उठकर निकलता तो हर घर के पास महसूस करता कि घर जाग रहा, क्यों? सब उठने वाले, सब रोने वाले। अब किसी को भी नींद आएगी ही नहीं कि सब जाग रहे हैं। क्या सो रहे हैं? माहौल का असर होता है। तो जहां जाकर हजरत खुद रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाना भवन गया में हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वहां थे। मैंने सोचा एक नेक आदमी है, चलो मिल लेंगे। हजरत से मिले, हजरत ने सीधे सीधे पूछा, किसी बुजुर्ग से तुमने बैयत की? नहीं हजरत, मुझसे बैयत कर लो, आप तो जिक्र अज़कार शुगल में लगाएंगे। नहीं लगाऊंगा, तुम बैयत कर लो। ठीक, बैयत कर लिया। हजरत ने फरमाया तीन दिन रहो। सो गए रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। तीन बजे तो बहुत आंख खुल गई, देखा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर पूरी मस्जिद में आहिस्ता आहिस्ता जिक्र में पूरी मस्जिद मशगूल है। ये चुप बैठे भी तो सुनना तो पड़ता ही है ना, आदमी सुनता है तो जबान बोलती है। खुद तो आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करने लगे मजबूरन। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन तो मजा मिला उनको जिक्र में, चौथे दिन आए और फरमाया हजरत में 40 दिन रहना चाहता हूँ ताकि मुकम्मल इरादत मिल जाए। 40 दिन में हजरत ने उनको खलीफा बनाया। तो ये सोहबत का असर होता है। सोहबत सालिह कुरा सालिह कुरत, सोहबत तालिह कुरा तालिह कुरत। अल्लाह हमें तौफीक दे, मैं सुनाऊंगा बुजुर्गों की सोहबत का नतीजा। अल्लाह हमें नेक बुजुर्गों की सोहबत नसीब फरमाए। गलत पीरों वलियों से अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। फंसने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम वनफअना।